हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अर्णव आधी रात तक जागता रहा। उसका मन आज बहुत विचलित था। आज जो उसने महसूस किया और अपनी जिन अनकही फीलिंग्स से उसका सामना हुआ, उसने अर्णव को बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। झुकाव का एहसास तो उसे पहले से था, पर धृति उसके लिए इतनी अहम बन चुकी है, इसका बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था उसे। आज हुआ आभास हो रहा था कि शायद उसके दिल में धृति को लेकर स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग्स पनप चुकी थी और वो मोहब्बत और नफ़रत के बीच खुद से एक जंग लड़ रहा था। धृति को दर्द देना चाहता था, पर उसकी परवाह करने से खुद को रोक नहीं पा रहा था। इन उलझनों को सुलझाकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा था, बीच में झूल रहा था और मन पर ये भय हावी था कि अगर धृति दोषी निकली तो कहीं ये एहसास उसके बदले के बीच न आ जाए। आधी रात के बाद कहीं जाकर अर्णव को नींद आई और अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो बिस्तर पर खुद को अकेला पाकर वो चौंकते हुए उठकर बैठ गया। बेचैनी से नज़रें घुमाईं और अगले ही पल उसकी नज़रें ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी धृति पर पड़ी। धृति हल्के चॉकलेटी रंग का प्यारा सा सूट पहने खड़ी अपनी मांग में सिंदूर सजा रही थी। इस बात से अनजान कि अर्णव की निगाहें उस पर टिकी हैं, धृति पूरी तरह से अपने काम में मगन थी। अर्णव को उसका साइड फेस ही दिख रहा था। धृति को इतने आराम से अपनी मांग में सिंदूर भरते देखकर अर्णव को वो वक्त याद आ गया जब उसने शादी के वक्त उसकी मांग में सिंदूर भरा था और गुस्से में सिंदूर मुट्ठी में भरकर उसकी मांग में भरने के जगह फेंका था, जिससे उसके बाल, चेहरा सब सिंदूर रंग में रंग गया था। एक कसक सी उठी अर्णव के दिल में, एक टीस सी महसूस की उसने और चेहरे पर अजीब से भाव उभर आए। उसने दर्द भरी आह भरी, फिर धृति पर से निगाहें फेर ली और बेड से नीचे उतरते हुए बोला, तुम अगर ठीक नहीं हो तो आज की छुट्टी ले सकती हो। धृति अचानक आई अर्णव की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने तुरंत पलट कर देखा तो अर्णव बाथरूम की तरफ बढ़ रहा था। नहीं, अब मैं ठीक हूँ, धृति का जवाब सुनकर अर्णव के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। उसने पलट कर धृति को देखा और अनायास ही उसकी नज़र धृति के हाथ पर चली गई और इसके साथ ही उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। तुम्हारे हाथ में तो पट्टी बंधी थी, कहाँ गई वो? मैंने खोल दी। और क्यों खोल दी, जबकि तुम्हारे हाथ पर लगा कट गहरा है और एक रात में कोई मिरेकल तो हुआ नहीं होगा कि वो ठीक हो गया हो। अर्णव भौहें सिकोड़े धृति को घूरने लगा। धृति ने पहले अपने हाथ को देखा, हथेली पर बड़ा सा कट लगा हुआ था। फिर उसने नज़रें अर्णव की तरफ घुमाई और गंभीरता से बोली, इतना भी गहरा कट नहीं है, पट्टी की तो ज़रूरत भी नहीं थी, एक तो दिन में खुद ही ठीक हो जाता, फिर नहाती कैसे अगर पट्टी नहीं खोलती तो? धृति का जवाब अर्णव को कुछ खास पसंद नहीं आया था। वो कुछ पल खामोशी से धृति को घूरता रहा, फिर कठोरता से बोला, जब तक तुम्हारा हाथ पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, तुम यहीं रहोगी और घर पर रहकर आराम करोगी, और ये मेरा ऑर्डर है जिस पर मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता। और जब तुम वापस ऑफिस जाना शुरू करोगी तो तुम रोज मेरे साथ ऑफिस जाओगी और मेरे साथ ही घर वापस आओगी, ताकि दोबारा ऐसा कोई हादसा न हो और मुझे घर पहुँचने के बाद फिर से तुम्हें ढूंढने के लिए ऑफिस न जाना पड़े। अर्णव ने अपना फैसला सुनाया और बाथरूम में चला गया। पीछे खड़ी धृति अवाक सी उसे देखती ही रह गई। फिर उसने बुरा सा मुंह बनाया और आकर बेड पर बैठ गई। अर्णव कुछ देर बाद फ्रेश होकर रूम में वापस आया तो धृति बेड के बीचों बीच किसी छोटे बच्चे जैसे नाराजगी से मुंह गुब्बारे जैसे फुलाए बैठी थी। अर्णव की नज़र उस पर पड़ी तो एक पल को उस क्यूट सी मासूम सी बच्ची पर उसकी नज़रें ठहर गई और लबों पर अनायास ही हल्की मुस्कान बिखर गई। पर अर्णव ने जल्दी ही अपने चेहरे के भावों को कठोर किया और धृति को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए अपने साइड के टेबल के पास चला आया। उसने ड्रॉवर से फ्रस्ट्रेट बॉक्स निकाला और धृति के पास आकर बैठ गया। हाथ दो अपना, अर्णव ने फ्रस्ट्रेट बॉक्स खोलते हुए कहा, जिसके जवाब में धृति तुनकते हुए बोल पड़ी, नहीं दूंगी। अर्णव ने कानों में जैसे ही धृति के शब्द पड़े, उसने चौंकते हुए निगाहें धृति की तरफ उठाईं, जो अब भी बच्चों जैसे मुंह फुलाए उसे ही घूरे जा रही थी। अर्णव ने भौहें सिकोड़कर उसे देखा, पर उसके घूरने के धृति पर कोई असर ही नहीं हुआ। वो भी बराबर नाराजगी से मुंह फुलाए उसे घूरने में लगी थी। अर्णव ने गुस्से में धृति का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो धृति ने झट अपने हाथ को अपनी पीठ से लगा लिया। उसकी इस हरकत से अर्णव खींच उठा। ये क्या हरकत है धृति, इतना फ्री टाइम नहीं मेरे पास कि सारा वक्त तुम्हारी सेवा में लगा रहूं। इसलिए अपनी ये बेफिजूल की जिद छोड़िए और चुपचाप हाथ आगे करो, वरना कल बचाकर आया था और आज खुद तुम्हें वहां बेसमेंट में बंद कराऊंगा। धृति से अपनी बात मनवाने के लिए एक बार फिर अर्णव ने गुस्से में उसको धमकी दी, जिसे सुनकर धृति का मुंह आश्चर्य से खुल गया और आंखों की पुतलियों को फैलाए वो अविश्वास भरी नजरों से अर्णव को देखने लगी। अर्णव भी सख्त निगाहों से उसे घूर रहा था। उसने भौहें उचकाते हुए इशारे में उससे सवाल किया कि बात मानेगी या वापस रिकॉर्ड रूम में बंद होगी। उसके इशारे को समझते हुए धृति के चेहरे के भाव एकाएक बदल गए और वो अर्णव पर गुस्से से चीख पड़ी। कितने बुरे हैं आप, आपको मुझ पर जरा भी दया या तरस नहीं आता। हर बार बस अपनी बातों और हरकतों से मुझे और मेरे मन को ठेस पहुंचाते रहते हैं। आखिर चाहते क्या हैं आप मुझसे, क्यों कर रहे हैं ये मेरे साथ? कभी अपनी नफरत दिखाकर, गुस्सा दिखाकर मुझे चोट पहुंचाते हैं, तो कभी ऐसे धमकियां देकर मुझसे अपनी बात मनवाते हैं, कभी खुद मुझे दर्द देते हैं तो कभी मुझे पीड़ा में देखकर मेरी परवाह करते हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आप चाहते क्या हैं मुझसे और क्यों मेरे साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। धृति की आवाज उसकी बेबसी और विवशता जाहिर कर रही थी। उसके लहजे में गुस्से से ज्यादा दर्द, पीड़ा और उलझन थी, जो अर्णव के पल पल बदलते व्यवहार के कारण थी। उसके सवालों ने अर्णव को सोचने पर मजबूर कर दिया था और उसकी सोच एक बार फिर उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर चुकी था जहां वो कल रात था। कहीं न कहीं धृति के इन सवालों का जवाब जानता था वो, पर उसे एक्सेप्ट करने की न तो हिम्मत थी और न ही चाहत। उसे किसी कीमत पर ये मंजूर नहीं था कि उस लड़की को लेकर उसके दिल में एहसास पनपे, जिससे वो बेइंतहा नफरत करता है। पर नफरत की कड़वाहट पर मोहब्बत की मिठास असर करने लगी थी, जिसका एहसास अर्णव को बखूबी था। पर वो ये बात धृति के सामने तो क्या, खुद के सामने भी स्वीकार करने से कतराता था, तो उसे कैसे बता देता? धृति के सवालों को सुनकर अर्णव एक पल को खामोश रहा। उसके चेहरे के सख्त भाव कुछ कोमल हुए, पर अगले ही पल उसकी हमेशा वाली सख्त रौबदार आवाज धृति के कानों से टकराई। कुछ समझ आने के लिए इंसान के पास दिमाग का होना बहुत जरूरी है, जिसकी भारी कमी है तुम्हारे पास। इसलिए जितना है उसे यूं बेवजह की बातों के बारे में सोचकर बर्बाद करने से बेहतर होगा कि तुम उसे बचा कर रखो और बिना कोई बकवास सी जिद किए चुपचाप मेरी बात मानो, तो मुझे तुम्हें धमकी देने में अपना वक्त बर्बाद करने की जरूरत ही न पड़े। अर्णव की बातों ने एक बार फिर धृति के नाजुक मन को टुकड़ों में तोड़कर बिखेर दिया। अर्णव ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर धृति पीछे को खिसक गई और आंसुओं से भीगी लाल आंखों से उसे घूरते हुए एकाएक अर्णव पर भड़क पड़ी।
नहीं मानूंगी मैं आपकी बात। समझते क्या हैं आप खुद को? होते कौन हैं आप मुझ पर हुक्म चलाने वाले और मुझे ये बोलकर जलील करने वाले कि मेरे पास दिमाग नहीं है? खुद को कहीं का सम्राट और मुझे अपनी सेविका समझते हैं आप, जो आपकी हर बात को पत्थर की लकीर बिना कोई सवाल जवाब किए आंख बंद करके मानती जाऊंगी। भूलिए मत कि मैं आपकी पत्नी हूँ, कोई नौकर या आपकी कैदी नहीं हूँ, जो आप हमेशा बस मुझ पर अपना रौब झाड़ते रहते हैं, हुक्म चलाते रहते हैं, सबके सामने मुझे जलील करते रहते हैं। नहीं मानूंगी मैं आपकी बात, नहीं करवाऊंगी हाथ में पट्टी और ऑफिस भी जाऊंगी, क्योंकि घर बैठने या आपके हुक्म मानने के पैसे नहीं मिलते मुझे, और न ही मुझे घर बैठकर फिर से बोर होने का कोई शौक है। धृति ने मन ही मन उन बीते दिनों को याद किया जो उसने खाली घर में बैठकर कितने मुश्किल से काटे थे। धृति की बातें सुनकर अर्णव ने घूर कर उसको देखा, पर उसकी नम आंखें देखकर उस पर गुस्सा न कर सका। उसने मन ही मन खुद को समझाया कि उसे धृति पर नाराज नहीं होना है और शांत लहजे में बोला, अच्छा ठीक है, नहीं देता तुम्हें ऑर्डर। तुम घर पर नहीं बैठना चाहती तो मैं आज तुम्हें अपने साथ मीटिंग में लेकर चलूंगा, जहां तुम्हें हाथ का इस्तेमाल करके कोई काम नहीं करना होगा, बस मेरे साथ चलना होगा। पर अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात मानकर हाथ में पट्टी करवानी होगी। आप मुझे अपने साथ मीटिंग में लेकर जाएंगे? धृति ने हैरानगी से आंखें बड़ी बड़ी करते हुए अविश्वास भरी निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सही सुन रही है, क्योंकि अर्णव पहले कभी उसे अपने साथ किसी मीटिंग में लेकर नहीं गया था। अर्णव भी उसकी स्थिति समझ रहा था। उसने सहमति में सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, आज एक डील फाइनल करने के लिए मुझे सामने वाली पार्टी से मिलने होटल जाना है, जहाँ मीटिंग होनी है। अगर तुम मेरी सारी बातें शांति से मानती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ वहाँ लेकर चलूंगा। बोलो, जाना चाहोगी मेरे साथ मीटिंग में? धृति ने कुछ पल अर्णव के इस ऑफर के बारे में गहराई से सोचा, फिर सहमति में सर हिला दिया। अर्णव के लबों पर शातिर मुस्कान तैर गई। उसने आंखों से धृति को कुछ इशारा किया, जिसे समझते हुए धृति ने अपना हाथ उसके आगे कर दिया। अर्णव ने उसके जख्म पर दवाई लगाई, फिर पट्टी बांधकर पीछे हटते हुए बोला, इसे दोबारा खोलना मत और यहीं रहना, मैं नहा कर आता हूँ, फिर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे चलेंगे। धृति ने एक अच्छे आज्ञाकारी बच्चे जैसे सहमति में सर हिला दिया। अर्णव ने उसके सर पर हाथ रखा और परिणाम स्वरूप धृति की पलकें झुक गई। इस स्पर्श में अपनापन महसूस हो रहा था उसे। अर्णव वहां से चला गया और धृति वहीं बैठी उस सुकून दे एहसास को अपने दिल में बसाती रही। कुछ देर बाद दोनों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया, जहां अर्णव ने ही धृति को खाना खिलाया। और आज पहली बार धृति अर्णव के साथ ऑफिस के लिए निकल गई, जहां धृति एकदम शांत सी खिड़की से बाहर देखते हुए अर्णव और उसके पल पल बदलते व्यवहार के बारे में सोच रही थी। वहीं अर्णव मन ही मन सोच रहा था कि आज उस आदमी से मिलेगा जिसे उसने धृति के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने को कही थी। कमिंग सून।